So today is Sunday.
तो आज रविवार है.
19th of
October 2014.
19 अक्टूबर 2014. It's Prabhupada Day in Punjabi Bhagya Chhara. It's Prabhupada Day in Punjabi Bhagya Chhara.
पंजाबी भाग में आप रूपा लीलामृत से पाठ कर रहे हैं.
So I want to read you a few excerpts from offerings in this year's Vyasa Puja book for Srila Prabhupada, written by disciples.
Maharaj, हमें इस वर्ष जो प्रभुपाद जी की व्यास पूजा पे उनके शिष्यों ने उन्हें भेंट अर्पित की थी उनमें से कुछ पढ़ के सुनाना चाहते हैं.
I'm going to begin with His Holiness Giriraj Swami.
महाराज गिरिराज स्वामी महाराज जी की ऑफरिंग से शुरू करेंगे.
Before beginning, let us say the Guru Parampara pranams. Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale
Shri Namah Bhaktivinoda Swami Namami Namaste Sarasvati Bhagavani Padayani Nirvishesha Shunyavani Vasyati Shatayani
Om Aginata Vrinda He says, sometimes I experience chastisement by Srila
Prabhupada.
And sometimes my mind and senses revolted.
In other
words, he's admitting that his false pride would make it hard for him to swallow chastisement by Srila Prabhupada.
दूसरे शब्दों में वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनका झूठा अहंकार श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दी गई डांट स्वीकार करने से उन्हें रोकता था.
But he says that Srila Prabhupada would pacify me with clear explanations.
फिर वो कहते हैं कि लेकिन श्रील प्रभुपाद मुझे बहुत ही सुंदर समझा देते थे.
Such as in this letter to me, meaning Giriraj Swami, which I will read some. Sing from this letter.
जैसे कि एक पत्र में जो प्रभुपाद जी ने गिरिराज महाराज को लिखा था उसमें उन्होंने उनको समझाया था कि उनको डांट क्यों पड़ी.
This is the 24th of May 1972.
ये 24 मई 1972 की बात है.
From Prabhupada to Giriraj Swami.
प्रभुपाद जी ने गिरिराज महाराज को लेटर लिखा.
It is the duty of the spiritual master to find fault with his students.
ये एक आध्यात्मिक गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्यों में दोष निकाले
so that they may make progress
ताकि वे प्रगति कर सकें
not that he should always be praising them
ये नहीं होता कि वो हमेशा उन्हें उत्साह और उनकी प्रशंसा ही करता रहे
so the foolish sentimental disciple may think that everything should be always fine a pat on the head yes Prabhu you're doing very good you know this is but this is sentimentalism here Prabhupada is making clear that sometimes the guru must chastise the disciple and that has to be accepted by the disciple otherwise he will be spiritually stunted you know the word stunted stunted yes cannot spiritually grow But who's the sound man? Who is the sound man? Come on. His mic is failing. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Nama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Ram, Hare
Ram. Ram Ram, Hare Hare.
Maharaj ने बताया कि लेकिन कोई मूर्ख और भावुक शिष्य सोचता है कि हमेशा उसकी प्रशंसा की जाए, लेकिन ऐसा करने से उसकी स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस है, आध्यात्मिक प्रगति वो रुक सकती है.
So Prabhupada says, it's not that the spiritual master should always be praising the disciple.
ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही गुरु अपने शिष्य को प्रशंसा करता रहेगा।
So if you find some criticism, he says to Giriraj Swami,
वो कहते हैं कि अगर आपको कोई आलोचना प्राप्त हो,
kindly accept it in that spirit.
तो उसे स्वीकार करें।
I am only interested in that you, along with all my other students, should become Krishna conscious.
प्रभुपाद बता रहे हैं कि मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप और मेरे अन्य शिष्य सब कृष्ण भावना में प्रगति करें।
So here we see a glimpse into the duty of guru. It's all not guru is not all about just many garlands, mahaprasadam, and many devotees saying Jai Gurudev. That is a fool's conception of guru.
तो महाराज बता रहे हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि गुरु वास्तव में क्या है गुरु सिर्फ ये नहीं है कि बहुत सारे शिष्य उनके आसपास हैं उनके बहुत सारे उन्होंने हार फूल माला पहने हैं और बहुत सारे शिष्य जय गुरुदेव कह रहे हैं तो ये एक मूर्खता का मूर्खता है इस प्रकार से सोचना कि गुरु ऐसे होते हैं
It's actually a type of tapasya. It is a type of tapasya.
ये एक तपस्या है
Because correcting Vaishnavas is a very difficult, sensitive issue.
क्योंकि वैष्णवों को ठीक करना एक बहुत ही संवेदनशील बात है.
Vaishnavas are not ordinary human beings.
वैष्णव साधारण मनुष्य नहीं होते.
It's like this room is full of Vaishnavas here.
जैसे कि यहाँ पे पूरा ये जो कमरा है वैष्णवों से भरा है.
जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय कृष्ण श्री बलराम की जय श्री राधिका रमण की जय It may appear that this room is full of ordinary people, but it's not. This room is full of Vaishnavas.
ऐसा लग सकता है कि ये कमरा साधारण मनुष्यों से भरा है, पर ऐसा नहीं है. ये कमरा वैष्णवों से भरा है.
Bhagavad Gita Krishna says, "Samahatma Sudhrava, that such great souls who turn towards Him, or even a little bit, even chota, try to serve Him." Krishna says, "Samahatma Sudhrava, such great souls." Are very rare. So we are surrounded here by Vaishnavas, maybe not very advanced, but we Vaishnav means very high position, even if you're not advanced. Try to understand this point.
तो महाराज बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता बोला है सब महात्मा से दुर्लभ जिस भी व्यक्ति के हृदय में थोड़ी सी भी इच्छा है भगवान की सेवा करने के लिए वो बहुत ही दुर्लभ है और ये पूरा कमरा ऐसे ही लोगों से भरा है। तो चाहे बहुत बहुत ज्यादा प्रगत वैष्णव ना भी हो लेकिन वैष्णव अपने आप में बहुत ऊंची स्थिति है।
Otherwise, why does Krishna say Salahama Sudhirdaba? Very rare. Because it's very rare. You've come here to hear Bhagavan message today. This is very rare. There are so many hundreds of millions of people in the city of Delhi. They're not here to hear the Bhagavan message, but you are here. So Sudhirdaba, it is very rare.
महाराज बता रहे नहीं तो फिर भगवान का ऐसा कहना कि सब महात्मा तो दुर्लभ है इसकी क्या मूल्य रह जाएगा। महाराज बता रहे हैं कि दिल्ली में करोड़ों लोग हैं लेकिन उनमें से कुछ ही आप जैसे लोग यहाँ पे भागवतम की कथा सुनने आए हैं तो ये बहुत ही दुर्लभ बात है।
So you are to be congratulated for that.
तो आपको इसके लिए बधाई दी जाती है।
Congratulating all of you for even taking an interest, even a casual interest in Krishna Sudhirdaba. Very, very
well. हम आपको बहुत बधाई देते हैं कि आपने भगवान कृष्ण में रुचि दिखाई है चाहे वो इतनी गंभीर रुचि ना भी हो लेकिन बहुत इसके लिए आपको बधाई है क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ है।
So you are all Mahatma.
तो आप सभी महात्मा हो।
Mahatma means who has got an interest in Krishna, even chota desire to hear, even chota desire to serve. Such person is Mahatma.
Mahatma का मतलब है जिसको कृष्ण में रुचि है चाहे वो कि बहुत छोटी सी ही इच्छा हो भगवान की सेवा करने की बहुत छोटी सी इच्छा हो भगवान के बारे में सुनने की लेकिन ये इच्छा ही उसे महात्मा बना देती है।
So correcting Mahatmas is tapasya because it's not easy because they're great souls, they're not ordinary persons. So there is an austerity to have to correct Vaishnavas. You understand?
तुम्हारे
austerity. The guru takes austerity. The senior devotees take austerity. Sannyasis take austerity. It is not a pleasure exactly, but it is a duty to train near devotees. What is to be done? What is not to be done? This is duty of guru and senior devotees, sannyasis, training near devotees. What is to be done? What is not to be done? Otherwise, there is no meaning to the whole system.
तो महाराज बता रहे हैं इसीलिए महात्माओं को ठीक करना एक तपस्या है जो कि गुरु और वरिष्ठ वैष्णव उठाते हैं। तो ये जो तपस्या है इसमें बहुत उनको देखना पड़ता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये पूरा सिस्टम है ट्रेनिंग का। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोई सिस्टम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
So Prabhupada says, so if you find some criticism, meaning criticism from Guru or criticism from himself, kindly accept it in that spirit that it is his duty. He means it is his duty to correct the disciple and train the disciple. This is what Prabhupada means. This is a very important point, essential point.
So Prabhupada is saying that Giriraj Maharaj is saying कि अगर आपको कोई आलोचना मिलती है अपने गुरु से तो आप उसे इसी भावना से स्वीकार कीजिए कि ये उनका कर्तव्य है कि आपको ठीक करें।
But we see in modern ISKCON, foolish neophytes, low-grade neophyte devotees, who are not even disciples, but maybe initiates or aspiring and like that, you know, or they are prakriti bhakta, they are materialistic devotees.
तो महाराज बता रहे हैं लेकिन आज के जो मॉडर्न इस्कॉन में बहुत ही कनिष्ठ भक्त जो हैं वो भौतिकतावादी भक्त हैं।
They try to control guru. This is nonsense. This is apparat. It is not that the low grade base neophytes should try to make the guru be what they want. Nonsense. You come and the Bhagavad Gita says, "Tad vidhi parapasena parapasena." With strong teeth, you approach Guru. That is the process.
तो महाराज बता रहे हैं लेकिन ऐसे शिष्य गुरु को नियंत्रित करना चाहते हैं तो ये बहुत ही नॉनसेंस है। तो हमें तो गुरु को दांतों में तिल का दबाकर ऐसे गुरु के पास जाने की प्रक्रिया बताई गई है.
Not that the neophytes create a fantasy guru and then try to force their guru to fit their fantasy, but this is actually going on. And so then the guru has to crack down. This is exactly what Prabhupada is saying.
तो महाराज बता रहे हैं कि लेकिन जो neophyte जो कनिष्ठ भक्त है वो अपने ही खुद की कल्पना बनाता है और गुरु को उसके हिसाब से चलने के लिए बाध्य करना चाहता है.
Is the duty of the spiritual master to find fault with his students so that they may progress? So this is the point that Prabhupada is making, that to cut away the thick covering of illusion, the mud, the dirt, the sewage, the garbage, to cut it away, that is guru. That is also sannyasi must do like that, senior devotees, trainers, they must do like that. You see, it is a type of tapasya, try to understand.
तो महाराज बताए हैं कि इसीलिए जो जो ये कनिष्ठ भक्त हैं इनके मन इनकी जो कल्पना है इनके जो गंदगी जमी हुई है उसे निकालने के लिए सन्यासी गुरु और जो वरिष्ठ वैष्णव हैं उन्हें उसे काटना होता है.
So here we see the heart of Siddha Prabhupada Mahabhagavat, who is situated in prem and so much love for every living entity, what to speak of his disciples.
तो यहाँ पे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद महाभागवत हैं जिनके हृदय में सभी जीवों के लिए प्रेम है ना केवल उनके खुद के शिष्यों के लिए.
He says, I am only interested that you along with all my other students should become Krishna conscious. This is love. This is love. This is compassion.
प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरी एकमात्र रुचि यही है कि आप और मेरे बाकी अन्य शिष्य कृष्ण भावना भावित बने. तो महाराज बता रहे हैं ये असली वास्तविक प्रेम है.
Now Girasham begins to glorify Jamuna Devi, one of Prabhupada's first disciples.
तो यहाँ अब दूसरे दूसरी ओर गिरिराज महाराज यमुना माता जी को का गुणगान कर रहे हैं जो कि प्रभुपाद जी की प्रारंभिक शिष्याओं में से एक है.
He is glorifying her in his Vyasa Puja offering because he is using her an example of extraordinary service both in Vani and Vapu, both in the personal service that she rendered to Prabhupada and in the Vani instructions after his departure. So he is glorifying her in this way, and I will read you from these Leela.
तो महाराज यमुना माता जी को इसलिए गुणगान कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही दक्षता से प्रभुपाद जी की सेवा की दोनों ही तरीकों से बापू और वाणी. बापू यानी कि जब उनके हृदय में जब प्रभुपाद वास्तविक रूप से उपस्थित थे और वाणी जब प्रभुपाद जी इस धराधाम को छोड़ के चले गए तो उनकी वाणी की सेवा.
Every morning when we greet the deities, the Govinda prayers, the lead singer is Jamuna Devi Dasi.
हर सुबह जब हम भगवान के दर्शन खुलते हैं दर्शन आरती में जब गोविंदम आदि पुरुषम जो प्रार्थना है उसकी जो मुख्य गायिका है वो यमुना देवी दासी हैं.
Some foolish brahmacharis, fanatics, objected, oh, why should there be the sound, the voice of a woman singing and dance? That's how we're supposed to greet the deities. What rubbish. You know, because she's situated on the platform of pure devotional service.
तो कुछ कट्टर ब्रह्मचारी उन्होंने ये बोला कि हम माता जी की आवाज में क्यों ये गोविंदम आदि पुरुषम सुने. तो महाराज बता रहे हैं क्योंकि वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे स्थित है.
Prabhupada loved those Govinda prayers, and it is he who established this Govindam Adi Purusham that we hear every morning all over the world. The Darshanarti opens with Jamuna Devi Dasi singing.
Maharaj,
all over the world, this is the standard now in all temples.
Maharaj बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी को ये गोविंदम आदि पुरुषम की प्रार्थना बहुत बहुत ही अच्छी लगती थी और उन्होंने ये सिस्टम बनाया कि दर्शनार्थी में पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन के सेंटर्स में ये गोविंदम आदि पुरुषम से भगवान का अभिनंदन किया जाएगा.
So she was a great sold-out disciple of Srila Prabhupada.
तो यमुना देवी दासी प्रभुपाद जी की बहुत ही अच्छी शिष्य थी.
This is also here Giriraj Swami is exhibiting what is real Vaishnava. He's glorifying his god sister. It could be god brother also, doesn't matter. But he's glorifying another Vaishnava in his offering to Prabhupada. This is the etiquette. This is real Vaishnava. This is bona fide Vaishnava. Not envy, not false criticism, not harshness, not ice cold impersonalism. That we see sometimes the neophytes are ice cold and impersonal, and I say think somebody's highest rank, all rubbish.
तुम्हारे बता रहे हैं कि गिरिराज महाराज ने अपने इस ऑफरिंग में यमुना माता जी का गुणगान करके ये दिखाया है कि वास्तव में एक प्रामाणिक वैष्णव कैसा होता है कि वो हमेशा अपने गुरु भाइयों गुरु शिष्य गुरु बहनों का गुणगान करते हैं अपने सब सबके सामने ना कि उनसे द्वेष करते हैं या द्वेष जाहिर करते हैं जैसे कि कनिष्ठ भक्तों के बीच में द्वेष चलता है
without consideration of their whether they're high rank or low rank, compassion and love and friendship should always be there.
Maharaj बताया है कि वैष्णवों को हमेशा ही दूसरे भक्तों के प्रति बहुत ही मैत्रीपूर्ण स्वभाव रखना चाहिए अपने ऊंचा स्तर नीचा स्तर इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए बहुत ही दया प्रेम और मैत्री का उनका स्वभाव होना चाहिए
Giriraj is demonstrating the perfection of Vaishnava etiquette and behavior. He is glorifying his god sister very nicely.
Giriraj Maharaj, Vaishnava acharan ka perfection, purnata yahan pe bata rahe hain ki apne guru behan ka gungan karke.
Jubuna was also a famous cook. She was personally trained by Srila Prabhupada 1967 how to cook in New York. Prabhupada personally trained her.
यमुना माता जी इसलिए भी प्रसिद्ध थी क्योंकि उनको प्रभुपाद जी से वास्तविक रूप में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था कुकिंग के अंदर
1967 में
तो महाराज बता रहे हैं कि यमुना माता जी पूरे इस्कॉन में बहुत ही फेमस बहुत ही प्रसिद्ध हो गई कुक के रूप में और उन्होंने इतने बहुत ही मोटी एक किताब पब्लिश की कुकिंग के ऊपर
So she was personally trained how to cook by Srila Prabhupada.
उनको व्यक्तिगत रूप से प्रभुपाद जी से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था कि कैसे कुकिंग करनी चाहिए
In ghee, of course.
निश्चित रूप से घी में
So two of her personal services, Srila Prabhupada was cooking and cleaning. She personally cooked for Srila Prabhupada.
तो बता रहे महाराज जी वो व्यक्तिगत रूप से प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग किया करती थी
But sometimes Prabhupada would correct her also, even though she was very expert at both cooking and cleaning.
लेकिन कभी कभी प्रभुपाद जी उनको ठीक भी किया करते थे यद्यपि वो बहुत दक्ष थी कुकिंग और क्लीनिंग में
So, Giriraj is giving some remembrances here
in
the early days in Mumbai.
यहाँ पे गिरिराज महाराज अपने कुछ यादें हमें बता रहे हैं.
There are big pandal programs, and Srila Prabhupada was preaching to 20,000 people at a time.
बॉम्बे में एक बहुत बड़ा पंडाल कार्यक्रम का आयोजित किया गया था जहाँ प्रभुपाद जी एक बार में 20,000 लोगों को प्रचार कर रहे थे
But Srila Prabhupada was staying in a high-rise apartment building in an affluent area of the city.
और प्रभुपाद बॉम्बे के एक बहुत ही धनाढ्य क्षेत्र में निवास करते थे
So Jibuna Devi would stay back and do cleaning instead of going to the program. She would stay back and she would clean Prabhupada's apartment.
और यमुना माता जी पंडाल प्रोग्राम में ना जाके प्रभुपाद जी के ही अपार्टमेंट में रुके वहाँ पे उनका सब साफ सफाई करती थी
And she would clean for hours and while cleaning she would sing in an ecstatic mood
और वो घंटों घंटों सफाई करती थी और वो इस भावोन्मत्त होके भगवान के गीत भी गाती थी
And she put her whole heart into this service
और इस सेवा में अपना पूरा हृदय वो लगाती थी
So Guru Goswami says later, after Prabhupada's departure in 2007, he asked Jamuna to please tell him more details about the service she was doing in those days.
तो गिरिराज महाराज ने यमुना माता जी से पूछा बाद में जब प्रभुपाद जी का तिरोभाव हो गया कि आप कैसे प्रभुपाद जी की ये सेवा के बारे में और विस्तार से बताइए कैसे आप क्या करते थे
So she replied that Prabhupada had a more emphasis on Bhagavad Marg, that is the Shastra, that exposing the public to the scripture than in all the rules and regulations, other rules and regulations of devotional service. He wanted to get the people educated through his books.
तो यमुना माता जी ने बताया कि प्रभुपाद चाहते थे कि सारे के सारे जन सामान्य को भक्ति के कायदे कानून के बारे में शिक्षा प्राप्त हो उनके ग्रंथों के द्वारा
So he didn't have time to train all of his disciples, but he trained her personally in the proper methods of cleaning and so many things.
तो वो बता रही थी कि यद्यपि प्रभुपाद जी ने बहुत सारे शिष्यों को प्रशिक्षण दिया था लेकिन उनको प्रभुपाद जी से व्यक्तिगत रूप में प्रशिक्षण मिला था कि कैसे सफाई की जानी चाहिए उसकी गहराई से प्रभुपाद जी ने उनको सिखाया था
And he would train according to the devotee's capacity to accept.
और बता रही थी कि प्रभुपाद जी भक्तों को उसी मात्रा में प्रशिक्षण देते थे जिस मात्रा में वो स्वीकार कर सकते थे
Now this is very important. Everybody pay attention.
तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात चल रही है. आप सभी ध्यान से सुनें.
She often needed to clean Srila Prabhupada's four-tier cooker. There is this traditional type of cooker where you can, using steam heat, you can cook four different things in them: rice, sabji, dal. Four different things you can cook at one time in this stacked cooker. And that's how. The servants were cooking for Srila Prabhupada.
तो एक बार यमुना माता जी ने प्रभुपाद जी से आग्रह किया कि वो उनका जो एक विशेष प्रकार का कुकर है उसकी सफाई करना चाहती थी उस कुकर में एक ही बार में चार चीजें पकाई जा सकती थी चार खानों वाला कुकर था
If Srila Prabhupada found any black spot on the bottom of any one of the levels of the cooker, he would chastise Jamuna.
और अगर प्रभुपाद जी को किसी एक खाने के भी जो तले पे थोड़ा सा भी कोई काला धब्बा दिख जाता था तो प्रभुपाद यमुना माता जी को बहुत डांटते थे
He would say, This is not Vaishnav.
वो कहते थे ये वैष्णव नहीं है
So I don't know if any of you are kitchen volunteers here.
महाराज कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि आप में से कितने वक्त यहाँ पे रसोई में
कार्य spread the word to kitchen volunteers because often this standard is not known. All the black must be removed. Because I just recently read this. So I was telling somebody was cleaning a wok in the Didi kitchen, and they were just scrubbing it, and the whole thing was remaining black ice. And I told them about this instruction from Prabhupada to Jamuna Devi. No, you must remove the black. And then here Prabhupada is saying, this is Vaishnava. So Socha was a central core teaching of Vaishnava.
तो महाराज बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई रसोई के भक्त हैं तो इसे उन तक पहुँचा दें कि सारी कालक मिटा निकालनी होती है उसके बर्तनों में से जब हम धोते हैं बर्तन ये प्रभुपाद जी की आज्ञा थी यमुना माता जी को और बता रहे महाराज कि बहुत ही विशेष सिद्धांत है वैष्णवता का कि शौचम साफ सफाई
So if there were some black left on the cooker, he would say, this is not Vaishnav, this is Muslim.
तो अगर कुछ कालक बच जाती थी कुकर पे, तो प्रभुपाद कह रहे थे ये वैष्णवता नहीं है, ये मुस्लिम है।
Then listen carefully. He says, no Vaishnav will ever leave a black spot on any of the pots in the kitchen.
तो ये बात आप ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद कह रहे थे कोई वैष्णव कभी भी अपने बर्तन पे कोई भी काला धब्बा नहीं छोड़ेगा
I think I'll have to have this written out in Hindi and laminated and put in the Didi kitchen, you know.
तो महाराज कह रहे हैं ऐसा लगता है कि मुझे इसका एक हिंदी रूपांतरण लेके इसको Didi kitchen में लगा देना
It's too easy just to clean things and remove the loose sabji and this and that, and then just leave it stained behind, black and all that. Your Prabhupada is saying, no, this is not Vaishnava. Absolutely not. He's being, guru means heavy actually.
तो ये तो वास्तव में बहुत आसान है कि कुछ सब्जी कुछ तेल ये तो निकालने में कोई मुश्किल नहीं होती धोते समय, लेकिन वास्तव में कालक भी निकालनी है। तो प्रभुपाद जी बहुत ही जोर से बोलते थे इस चीज को। तो प्रभु महाराज बता रहे हैं कि वास्तव में गुरु का मतलब होता है भारी।
So Prabhupada said, no Vaishnava will ever leave any black spot on any of the pots in the kitchen. It's a very heavy instruction because it's not easy. Sometimes it's, you know, you have to practically use an electric buffer or something to get it off. But if they're cleaned regularly, properly every day, you see, then there's not a problem. It's only when it's neglected over time, then it becomes glazed, you know the word glazed, then it becomes burned on. So then it becomes extremely difficult to take off. But Prabhupada is saying, that is not Vaishnava. Very crystal clear instruction that he's giving to Jamuna here.
तो महाराज बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी इसलिए कहते थे कि ये वैष्णवता नहीं है काला धब्बा छोड़ना। तो महाराज बता रहे हैं कि अगर ये रोज सफाई हो बर्तनों की तो ये समस्या नहीं आएगी, लेकिन जब हम इसका नकारते हैं इससे बचते हैं तो फिर वो कुछ समय के बाद वो कालक जमने लगती है और फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल हो
जाता। It was made out of brass, so it was always to shine like gold.
यहाँ पे गिरिराज महाराज बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड ये था कि प्रभुपाद जी का जो कुकर था वो हमेशा सोने की तरह चमकता था, यदि भी वो ब्रास से बना था।
So based on Srila Prabhupada's instructions, Jamuna developed a five-step process, starting with cleaning the floor from top to bottom of the apartment, cleaning. She'd get all the main dirt off the floor, then she would work her way up the walls as far as she could reach.
तो महाराज बता रहे हैं कि यमुना माता जी प्रभुपाद जी के पूरे अपार्टमेंट को नीचे से ऊपर तक सफाई करती थी। पहले जमीन से गंदगी हटाती थी, फिर दीवारों से हटाती थी जहाँ तक उनका हाथ पहुँचता था।
So she would do the dusting and then she'd go back to the bottom, cleaning everything as perfectly as she possibly could.
फिर वो धूल मिट्टी हटाती थी और फिर बहुत ही जितने उनकी क्षमता थी उसके अनुसार
अगर
उनसे कुछ भी गलती हो जाती थी और कोई भी धूल रह जाती थी तो प्रभुपाद उसको पकड़ लेते थे और उसपे फिर इशारा करते थे।
And it was hard to keep the room clean in Vrindavan in those days.
और उन दिनों में उस कमरे को साफ रखना बहुत बड़ा चुनौती थी।
Because construction is going on, so there was a lot of dust.
क्योंकि उस समय मंदिर का निर्माण चल रहा था तो इसीलिए बहुत ज्यादा धूल मिट्टी होती थी।
But even here in Punjabi Bagh, we see that it's difficult to keep a room free from dust. In my room, the dust is continually accumulating, you know.
यहाँ पंजाबी बाग में भी हम देखते हैं कि साफ सफाई कमरे में रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि महाराज आरते बता रहे हैं कि उनके कमरे में भी धूल मिट्टी जमी रहती है।
So drifting sand, in those days there were drifting sands. In Ramanredi, there weren't so many buildings.
उन दिनों बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती भी थी।
So there was always dirt everywhere. So cleaning was a big job for her.
तो इसीलिए हर जगह धूल मिट्टी थी और इसीलिए यमुना माता जी के लिए साफ सफाई बहुत बड़ी कार्य था।
So one day Prabhupada came back from his morning walk.
एक दिन प्रभुपाद अपने सुबह की सैर से वापस आए।
She'd already cleaned the room. It seemed as though it was perfectly clean.
और उन्होंने यमुना माता जी ने कमरा साफ करके रखा हुआ था और वो लग रहा था बहुत ही अच्छे से साफ हुआ था।
So, but Prabhupada told her, please clean my room, Yamuna.
अब प्रभुपाद ने कहा उन्हें कि यमुना मेरा कमरा साफ कर दो।
Haven't I taught you how to clean?
क्या मैंने आपको साफ सफाई करना सिखाया नहीं है?
So she said, no, Srila Prabhupada, meaning, no, I didn't get it, you know. I, I, You taught me, but I didn't understand.
तो ये मतलब महात्मा जी ने उत्तर दिया कि आपने तो मेरे को सिखाया है लेकिन मेरे को समझ नहीं आना.
She was very submissive, so she asked, "How can I improve my cleaning?"
और क्योंकि वो बहुत ही विनम्र थी और समर्पित थी इसलिए उन्होंने प्रभुपाद से पूछा कि मैं अपना सफाई और कैसे सुधार सकती हूँ.
So Prabhupada didn't say anything in response.
और प्रभुपाद ने फिर उत्तर दिया.
There are a few items on his desk.
कुछ भी उत्तर नहीं दिया प्रभुपाद जी ने इसका.
There was a stapler. One of the items was a stapler.
और उनके टेबल के ऊपर कुछ चीजें रखी थी जिनमें से वो एक स्टेपलर था.
It was a small stapler, only about this size, six centimeters.
तो बहुत ही छोटा स्टेपलर था, 6 सेंटीमीटर के आसपास.
So he picked up the stapler.
तो उन्होंने वो स्टेपलर उठाया.
And he removed it from its plastic case. It was inside a plastic case even.
और उसको उसके जो प्लास्टिक के डब्बा था उसमें से निकाला.
And he ran his little finger across the thin metal strip between the staple holder and the hinge.
और उन्होंने अपनी छोटी उंगली को स्टेपलर के बीच में लगाया.
And there was dust.
और उसमें से धूल निकल गई.
So he said, "When will you learn how to clean?"
तो और उन्होंने बोला कि आप सफाई कब सीखोगे?
Well, he was being tough on purpose, out of love, you know. He wanted her to become perfect in her service. This was the point. Not that he was a fault finder. He went out of great love and affection. He wanted her to become perfect in her service.
तो प्रभुपाद इस समय लिख सकता है कि प्रभुपाद बहुत ही ज़्यादा ही भारी हैं. लेकिन वो प्रेमावश उनसे चाहते थे कि वो यमुना माता जी अपनी सेवा में बिल्कुल परफेक्ट बन जाएं. वो ये नहीं है कि वो उनके अंदर कमी निकाल रहे हैं.
So after more than 30 years later, she says, "I can honestly say I do cleaning joyously." And she and her roommate would sing and they would clean for hours.
तो यमुना माता जी 30 साल के बाद बता रही हैं कि वो बहुत घंटों सफाई करती थी खुशी से.
Now about cooking.
तो अब हम इस कुकिंग के बारे में सुनेंगे.
Yamuna was very expert.
निश्चित रूप से यमुना माता जी बहुत ही दक्ष थी कुकिंग में.
So once when Srila Prabhupada was coming to Vrindavan, Yamuna went to some local Brajavasis and asked, "What is the best way to make Brajavasi rotis?"
तो यमुना माता जी जब एक बार प्रभुपाद वृंदावन आ रहे थे तो यमुना माता जी ने ब्रजवासियों के पास जाके उनसे पूछा कि ब्रजवासियों के लिए सबसे अच्छी चपाती रोटी कैसे बनाई जाती है.
So they told her, "You have to get red Punjabi wheat berries."
तो उनको बताया गया कि आपको पंजाबी बेरीज प्राप्त करनी होंगी.
You have to grind them in the morning.
और उनको सुबह आपको उनका
you have to cook the rotis with neem wood.
उनको ग्राइंड करना होगा सुबह और फिर आपको नीम की लकड़ी से उनको बनाना होगा.
So when Srila Prabhupada came back from his walk and he sat down to take his breakfast, she didn't say anything about how she cooked.
जब प्रभुपाद सुबह सुबह अपनी सैर से लौटे और अपना नाश्ता लेने के लिए बैठे तो यमुना माता जी ने कुछ नहीं बताया उनको कि कैसे उन्होंने कुकिंग किया है.
But she had obtained the red Punjabi wheat berries.
पर उन्होंने लाल पंजाबी बेरीज प्राप्त कर ली थी.
She had them ground in the morning.
और उनको ग्राइंड भी कर लिया था.
And then they cooked, and then she cooked rotis. On neem wood.
और नीम की लकड़ी के ऊपर चपाती उन्होंने पकाया था.
So when she went in to serve Srila Prabhupada and put the hot rotis on his plate.
और जब उन्होंने गरम गरम रोटी प्रभुपाद जी के थाली पे रखी.
He took only one bite.
उन्होंने बस एक निवाला लिया.
And he said, "This is from red Punjabi wheat berries."
और बोला कि ये लाल पंजाबी वीट बेरीज से है.
You ground them this morning.
आपने उन्हें इसी सुबह ग्राइंड किया है.
And you cook the rotis on neem wood.
और आपने चपातियों को नीम की लकड़ी पे पकाया है.
I'm trying to understand the problem with such a scientist. He was a scientist about everything. So he immediately, you know, she didn't say, purposely didn't say anything about how she'd cooked these rotis. And she cooked according to this instruction of Brajavasi. And Prabhupada knew exactly and told her exactly what she'd done. This is science. So everything in Krishna consciousness is science. Try to understand.
So we can understand that Prabhupada is so great a scientist in every field. So Prabhupada ji ne bina jane बस उसको एक बार चक्के ही बता दिया. यद्यपि निवेदना माता जी ने पहले उनको नहीं बताया था कि कैसे उन्होंने चपाती बनाई है.
His only comment was, they're very nice, but if you cook them 1 or 2 seconds longer, they will be even better.
और प्रभुपाल ने इतना भी बोल दिया कि बहुत अच्छी बनी है, लेकिन अगर आप इनको 1-2 सेकंड और पकाओगे तो ये और अच्छी बन जाएंगी.
And that was at the Radhadamodar temple in 1972, because Krishna Balaram Mandir was not completed, you know. They could, it took a long time to build that temple.
और ये बात 1972 की है जब राधामोदर मंदिर में प्रभुपाद रुकते थे, क्योंकि कृष्ण बलराम मंदिर उस वक्त निर्माण अधीन था, वो पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हुआ था.
Grand opening of Krishna Balaram Mandir was in 1975.
और कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन 1975 में हुआ था.
Also in 1973, there was another experience she had. Sasuru Maharaj was Prabhupada's personal servant at that time. There was no kitchen, and she was cooking on a what's called a bucket stove on the floor.
एक स्टोव जो पोर्टेबल स्टोव पे ही कुकिंग कर रही थी.
It's heated with coal and soft coal and then cow dung. It's hard to regulate the temperature.
और उधर बहुत ठंडा था, तो जो कुकिंग के लिए जो गर्मी चाहिए थी उसको बना के रखना मुश्किल था.
So you have to have a certain temperature. It can't be too high or too low. You can't just turn a dial like with gas cooking. You can't just turn a dial. See, this is the old-fashioned way. It's so tricky.
तो अभी तो हम गैस के नॉब के अनुसार टेम्परेचर एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन तब नहीं कर पाते थे.
So she made chapatis for Prabhupada's lunch cooking on the stove.
और प्रभुपाद जी के लंच के लिए उन्होंने चपाती इस स्टोव पे बनाई थी.
So Sasuru Maharaj wanted to take the lunch in to Srila Prabhupada, thinking that Jamuna, being a Manaji, should not do that personal service.
और ससुरु दास महाराज जी लग रहा था कि यमुना, क्योंकि माता जी हैं, उन्हें प्रभुपाद जी के लिए इतना व्यक्तिगत सेवा नहीं करनी चाहिए.
So she took him in the plate, and then he came back into the kitchen, and Maharaj said, Prabhupada wants me to teach you how to make chapatis.
और वो आए और उन्होंने यमुना माता जी को बोला कि प्रभुपाद चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं कैसे चपाती बनाते हैं.
We see here Jamuna's humility. She was already an expert cook, but we see here her humility, her.
यद्यपि वो पहले से ही दक्ष कुक थी, लेकिन यहाँ पे हम उनकी विनम्रता देख सकते हैं.
She said, "Oh Maharaj, I would be so grateful if you could do that. I'd love to learn how to make chapatis, please."
She's
already an expert cook, but she's saying, "Oh, I'd love to learn how to make chapatis, please."
उन्होंने महाराज को बोला कि मैं बहुत आभारी हूँ आपके, आप मुझे सिखाइए, मैं बहुत इसे बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि मुझे कोई चपाती बनाना सिखाए. यद्यपि वो पहले से ही दक्ष थी चपाती बनाने में.
So then Sasuru Maharaj demonstrated for her.
और फिर ससुर महाराज ने उनको दिखाया.
Apparently, Sasuru Maharaj was also an expert cook, or he was had received instruction already from Srila Prabhupada on how to cook.
और ससुरु दास महाराज भी बहुत ही दक्ष कुक थे, उन्होंने प्रभुपाद से सीखा था.
Then he He washed his hands, and then, in the meantime, the stove, it's called thawa, the griddle, was really hot, and he rolled out irregular shaped chapati.
और फिर उन्होंने एक चपाती को बना गूंधा और उसकी जो आकार था वो ठीक नहीं आ पाया था।
And he told her that you know when you make a chapati, what makes it from sticking is the amount of you have to put the wheat, you know, of the flour you have to put to keep it sticking to the griddle, so that's what keeps it rolling, you know.
और उन्होंने बताया कि चपाती बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चपाती घूमते रहे, चपाती घूमती रहे।
And then you have to dust it off, or the flour will burn on the griddle. So it's all very scientific.
तो और उसके बाद आपको चपाती स्टोव पे डालने से पहले उसका सूखा आटा निकाल देना चाहिए ताकि वो उसमें फिर जले ना।
So then he put this irregular shaped chapati, in other words, it wasn't perfectly round.
और वो जो चपाती थी वो पूर्ण रूप से गोल नहीं थी और उसको फिर उन्होंने स्टोव पे डाल दिया।
Hot griddle. And she asked Maharaj, what should I be looking for?
तो यमुना माता जी ने पूछा कि महाराज मैं इसमें से क्या सीखूं?
He said, you will wait until there are pimples on the top.
और फिर उन्होंने बोला कि आप तब तक रुकिए जब तक इसके ऊपर फूले ना।
As soon as the chapati hit the griddle very hot, the pimples came very fast. He turned the chapati over and there were little burnt holes. So there was no question if it's puffing up. This is a different way of cooking chapati.
तो फिर उन्होंने बहुत गर्म स्टोव पर चली चपाती को डाला तो वो एकदम गर्म हो गई, उसमें छोटे छोटे दाने आ गए, उसमें जल भी गई थोड़ी सी और बिल्कुल नहीं फूली।
So he put it on and little bubbles appeared at different places. He cooked it on both sides and took it to Prabhupada. And then he came back and told Yamuna, Prabhupada said, this is excellent.
और उन्होंने वापस ले प्रभुपाद जी को ले जाके वही चपाती दी और यमुना मात्र जी को आगे बताया कि प्रभुपाद ने कहा ये बहुत ही अच्छी है।
So that's how Prabhupada taught me. It was never with a whip, but definitely with some strength of chastisement from time to time and correction.
तो इसमें फिर प्रभुपाद उन्होंने बताया कि प्रभुपाद जी ऐसे मुझे सिखाया करते थे।
So she when she used to cook for Prabhupada, she used to bring him prasadam and then just leave quietly without speaking. And that was the normal practice. And she gave some instruction.
और जब भी वो लेके आते थे प्रभुपाद जी के लिए प्रसाद तो वो आते थे, रख देते थे और फिर चले जाते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। तो ये एक प्रकार की संस्कृति है।
Unless he had instruction, then he ate quietly and he would eat by himself.
और क्योंकि प्रभुपाद खुद ही शांति में अपने आप ही प्रसाद ले लेते थे।
You had to pray, cook, and meditate in a meditative mood, deliver the prasad, offer it, and then depart.
आपको प्रार्थना करनी है, ध्यान से प्रसाद बनाना है और फिर उनको ऑफर करके चले जाना है।
And this is required to cook for Prabhupada, this mood.
और ये भावना बहुत जरूरी है अगर आपको प्रभुपाद जी के लिए प्रसाद बनाना है।
Anyways, there are more things from the biography, from these notes.
खैर हमारे पास और भी बहुत सारी बातें हैं चर्चा करने के लिए।
Actually, there's some really important stuff here. I'm going to read some excerpts.
मैं बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें से कुछ छंद पढ़ के सुनाऊंगा।
Prabhupada went to Allahabad for the partial Kumbh Mela in
1970.
And Giriraj Swami was there and Jamuna was also there.
और वहाँ पे गिरिराज स्वामी महाराज और यमुना माता जी दोनों उपस्थित थे.
So then Giriraj Swami asked Jamuna for her recollections when she visited him in 2007.
और गिरिराज महाराज ने 2007 में यमुना माता जी से उनकी यादें पूछी उस चीज उसके बारे में.
She would used to sit in the front of the feet of Srila Prabhupada. When he was lecturing. But in Allahabad, when Sannyasi told her, actually in India this is not the practice, so then she sat further away.
पर जब अलाहाबाद में एक बार एक सन्यासी ने यमुना माता जी को बोला कि ये ठीक नहीं है तो वो फिर और पीछे बैठने लगी.
So Prabhupada said, you don't want to hear anymore? He saw Jamuna passing by his tent and he said, you don't want to hear anymore?
तो फिर प्रभुपाद जी ने एक कटाक्ष किया यमुना माता जी को बोला कि आप और अब ज्यादा श्रवण करने में रुचि नहीं है आपकी.
Jamuna burst into tears.
यमुना माता जी फिर रोने लगी.
He said, where were you this morning?
तो प्रभुपाद ने पूछा कि आप कहाँ थे इस सुबह.
She told him how she'd been corrected by the sannyasi.
और उन्होंने बताया कि मैं सन्यासी के द्वारा मुझे ये बताया गया था पीछे बैठने के लिए.
So Jamuna asked Prabhupada, how much time did you actually spend with your Guru Maharaj, meaning Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur?
Yamuna Mataji ne Prabhupada se pucha ki aapne apne guru ke saath kitna samay vyaktigat roop se aapne bitaya hai.
This is very heavy stuff now. Listen to this carefully.
Ye bahut hi mahatvapurn baat hai. Aap isko dhyan se suniye.
He said, I was with him, my Guru Maharaj, on very few occasions.
उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु महाराज के साथ बहुत ही कम
maybe five or six,
पांच या छह बार.
But they were very intimate.
पर वो बहुत ही घनिष्ठ थे.
We used to walk and talk so many things.
हम साथ में चलते थे और बहुत सारी चर्चाएं किया करते थे.
One day Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur told him, those who think that association with a spiritual master is physical.
एक दिन श्रील भक्तिदास ठाकुर जी ने प्रभुपाद को बोला कि जो लोग सोचते हैं कि जिनका गुरु के साथ जो संबंध है वो एक भौतिक रूप.
They are no better than a mosquito sitting on the lap of a king.
मतलब सिर्फ उनके शरीर से जो पास में रहने का संबंध है जो ऐसा सोचते हैं वो केवल एक मच्छर की तरह है जो कि.
And what is the business of a mosquito?
और मच्छर का क्या कार्य है?
Simply to suck blood.
केवल खून चूसना.
So many of my godbrothers, they were big sannyasis, Prabhupada was saying.
प्रभुपाद कह रहे थे कि मेरे बहुत सारे गुरु भाई बहुत बड़े-बड़े सन्यासी थे.
And they thought like that, this vapu or personal association was all in all, and neglected money.
और वो ये तो सोचते थे कि जो बापू है जो व्यक्तिगत व्यक्तिगत संघ है गुरु का वही सब कुछ है और उन्होंने गाड़ी को नकारा.
So Prabhupada said they thought the vapu was the most important.
उनको लगता था कि बापू सबसे ज्यादा जरूरी है.
And then he says a very shocking statement. He says, and they simply sucked blood.
और फिर उन्होंने बहुत ही प्रभुपाद ने ऐसा वाक्य बोला कि पर उन्होंने केवल खून ही चूसा.
Anyways, this is very heavy instruction, and we should take these instructions are the Vani, it's for all time, and this is how we actually learn how to become Krishna conscious. The Vapu is secondary. This is the point that Giriraj Swami is making and Jamuna Dasi is making.
तो यद्यपि यहाँ पे बहुत ही भारी हमें शिक्षा प्राप्त होती है लेकिन हमें सीखना चाहिए कि वाणी हमेशा के लिए है और ये हमें कृष्ण भावना भावित बनाएगी। बापू भी जरूरी है लेकिन वो उससे सेकेंडरी है।
Any questions?
किसी का कोई प्रश्न है?
जगगुरु श्री बाबा की जय। गिरिराज को बुलाम दी जाए। He has a question? Who has a question? Yes, you have to relay the question. No, I won't understand through the mic. You can talk in the mic, but all right.
Thank you very much, Maharaj, for such a very powerful and very instructive pastimes of Srila Prabhupada. I have one question regarding that in the beginning, Srila Prabhupada, Srila Prabhupada was always available to his disciples and to train them personally.
Always available, yes. He
and
was
as and when the movement expanded, the preaching expanded, he was traveling always. Similarly, following his footsteps, his disciples, which are our spiritual masters.
Yes.
In the present, our Guru Vrinda in ISKCON, they are also traveling and preaching on behalf of Srila Prabhupada.
Yes.
So, how one disciple can receive a kind of personal attention of Guru? And how does he know that whether Guru is pleased by his service or not? Or how there is a possibility of...
Alright, you could translate it in Hindi. How does it... Because the Guru, and we see my godbrothers now have thousands of disciples, and they're always traveling. How can a disciple get personal association with the Guru? Repeat in Hindi the question.
प्रश्न पूछा प्रभु जी ने कि प्रभुपाद जी जैसे शुरू में अपने सभी शिष्यों के लिए उपस्थित थे लेकिन जैसे आंदोलन आगे बढ़ा और फैला तो फिर प्रभुपाद पूरे टाइम ट्रैवलिंग करके ही प्रचार करते थे और फिर उनका जो व्यक्तिगत संघ था वो प्राप्त नहीं हो पाता था इतना ज्यादा। वैसे ही प्रभुपाद जी के शिष्य भी उनके चरणों में फॉलो करते हुए वैसे अभी उनके भी बहुत सारे शिष्य हैं और वो भी घूम घूम के प्रचार करते हैं तो इतना व्यक्तिगत संघ नहीं मिलता। तो गुरु जी पूछ रहे हैं कि व्यक्तिगत संघ कैसे मिले और हम कैसे समझें कि गुरु हमसे प्रसन्न है।
The answer is that you have to distinguish yourself with service.
तो इसका,
that is the complete answer to your question.
इसका उत्तर है कि आपको अपनी सेवा से अपने अपने आप को अलग करना मतलब।
It's the same principle as Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to say, don't try to see God, but work in such a way that God will see you.
तो ये वही सिद्धांत है जो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते थे कि आप भगवान को देखने का प्रयास मत कीजिए पर ऐसे कार्य कीजिए कि भगवान आपको देखें।
If you put your heart and soul and sincerity even into your part-time service, try to do some service, important service, try to find out what is most necessary, you inquire from temple authorities, you inquire what is the most necessary, how can I service, you become Bhakti Viksha leader, you do these kind of things, and then you can also ask for mercy, for personal vapu from temple authorities like that, but you should also distinguish yourself with service, not just that you live at home and do your work and then think you have a right to go and just get sense gratification of, oh Gurudev, Gurudev. No. But distinguish yourself with service. That is the 100% answer.
तो ये महाराज बता रहे हैं कि हमें अपनी सेवा से अपने गुरु के ध्यान को आकर्षित कर सकते हैं कि हम कोई महत्वपूर्ण सेवा कर सकते हैं चाहे हम बहुत छोटी सेवा क्यों ना करें उसमें अपना पूरा हृदय दे के अपनी पूरी गंभीरता से जो मंदिर के अधिकारियों से पूछ के ये सेवा करें और फिर हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें बापू संघ और बापू सेवा भी प्राप्त हो लेकिन हमको अल्टीमेटली अपने आप को अपनी सेवा से ही आकर्षित करना है गुरु के ध्यान को।
जस्ट लाइक माय पर्सनल असिस्टेंट He's very expert with massage. For when His Holiness Gopal Krishna Goswami is staying here at this temple, He goes in the evening around 10 o'clock and he gives him massage. You know, so in this way, he is well known by Gopal Krishna Maharaj because he's distinguished himself by important service. So you have to pray to Krishna to reveal to you what kind of service you can do to catch the attention of your Guru Maharaj, that's all.
So Maharaj is telling me, like मेरे व्यक्तिगत सेवक हैं वो बहुत अच्छे मसाज करते हैं तो उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जब भी मंदिर आते हैं रुकते हैं तो वो भी रात को 10 बजे जाके उनकी भी मसाज करते हैं तो इससे वो बहुत ज्यादा महाराज के द्वारा उनका उनको पहचान लिया गया है कि ये अच्छे मसाज करते हैं अच्छी सेवा करते हैं तो वैसे ही अगर हमें अपने गुरु का ध्यान आकर्षित करना है तो हमें अच्छी सेवा करनी है करनी होगी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें मार्गदर्शन करें कि कौन सी सेवा मैं अच्छे से कर सकता हूं
सो फर्स्ट यू ट्राई टू डिस्टिंग्विश योरसेल्फ यू इंक्वायर फ्रॉम द सीनियर डिवोटीज एंड मैनेजर्स व्हाट सर्विस कैन यू डू मोस्ट इंपोर्टेंट व्हाट्स द मोस्ट सर्विस I do like book distribution and so forth, like the marathon is coming up very soon. So distinguish yourself in book distribution.
So Maharaj is saying that you can ask from the authorities, from the prabandhas, what can I do with you? Like now there is a marathon coming, you can do the book distribution and you can perform well in that.
And you always inquire, first to inquire, what service should I do? Then inquire, how should I do it? Then inquire, after you have performing to the best of your ability that service, and then you can ask the temple authorities or secretaries, etc., how can I go for personal darshan? But do the service first. Not that, you know, people have got this attitude, you know, somebody may think the grihastras especially, householders, or they think their little household or world is the center of the universe. What have they done? First of all, what is your seva? What right do you have got to go and take the time of Acharya who is traveling all over the world? What right have you got to do that with 10,000, 15,000 disciples distinguishing themselves with service and you want to go and ask, oh, Gurudev, my baby just passed, pooped in his diapers. What should I do? And householders are coming like on this level. This is shameful.
So Maharaj is telling us that we have to focus on our service and to focus on our Guru's attention. And we need to ask our temple authorities and the temple officials what we can do, how we can do the service, then we can give our whole heart and give our whole strength to the service. और फिर हमें कोई मौका मिलता है कि हम फिर ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्या मैं गुरु से पर्सनल दर्शन कर सकता हूँ ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बस हम तो अपने गृहस्थ आश्रम में हैं तो हमें सेवा की क्या जरूरत है बस गुरु का दर्शन करना ही सब कुछ है क्योंकि जैसे गुरु पूरे जगत में घूम रहे हैं 10-15 हजार शिष्य उनके तो आप गए और उनसे बोला कि महाराज मेरे बच्चे ने ये थोड़ा सा हरकत की तो ये बहुत ही मतलब शर्मनाक बात है हमें सेवा से गुरु का आकर्षण प्राप्त करना चाहिए
So perhaps you could distinguish yourself during the upcoming marathon book distribution which is going to start very soon
तो आप चाहे तो अपने आप को बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में भी अच्छी सेवा करके गुरु के ध्यान को आकर्षित कर सकते हैं
Thank you very much. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Shri Shri Radhe Gurumana ki jai. Shri Shri Krishna Balaram ki jai. Giriraj Govardhan ki jai. Kartik Vrata ki jai. Nitai Gopi Manandi Hari Hari Bolo.
His Holiness Bhakti Madhuri Govind Swami Maharaj ki.